हरे कृष्णा, सभी भक्तों को नए वर्ष की शुभकामनाएं और स्वागत है हमारे इस वर्ष की बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय जिसमें भगवान सांख्य योग का दर्शन अर्जुन को दे रहे हैं। सांख्य का अर्थ होता है, अंग्रेजी में यदि इसका अनुवाद करें, एनालिटिकल स्टडी, कि संख्या पूर्वक भगवान अर्जुन को युद्ध क्यों करना चाहिए ये समझा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि केवल भगवान की ओर से ये एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन या सांख्य दर्शन हो रहा है, इससे पहले प्रथम अध्याय में अर्जुन के द्वारा अर्जुन ने भी भगवान को संख्या पूर्वक यह समझाने की कोशिश की कि कैसे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो दोनों अर्जुन और भगवान वो संख्या पूर्वक बता रहे हैं धर्मशास्त्र का उल्लेख करते हुए कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, युद्ध क्यों करना चाहिए। तो आपको यदि याद होगा, पिछले वर्ष हमने दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक लिया था? 37, जिसमें भगवान ने अर्जुन को कहा था कि युद्ध करने से अर्जुन को कैसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आज का जो श्लोक है वो बहुत ही विशेष है, जिसमें भगवान अब थोड़ा कर्म कांड का विचार कम कर अर्जुन को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहां पर भगवान कुछ विपरीत परिस्थितियां प्रस्तुत कर रहे हैं, सुख दुख, लाभ और अलाभ, अर्थात लाभ और नुकसान, लाभ हानि, जय अजय या जय या पराजय। तो ये विपरीत परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य भगवान का यही है। अर्जुन को कह रहे हैं समय कृत्वा कि समान व्यवहार अर्जुन तुम रखो, तुम अब इस द्वंद्व में मत रहो, क्योंकि जब तुम युद्धाय युज्यस्व, युद्धाय युज्यस्व का अर्थ है युद्ध करने के लिए केवल युद्ध करोगे तो पाप के भागीदार नहीं बनोगे। युद्ध करने के लिए युद्ध करोगे तो इसलिए ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक की शिक्षा, कि हम भी जिन द्वंद्वों में रहते हैं इस भौतिक संसार में, तो द्वंद्वों में हम कैसे समान रहे, इक्वी पॉइज्ड, स्थित प्रज्ञ, अविचलित कैसे हम रहें। तो ये तात्पर्य है आज के इस श्लोक का। तो कुछ चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोकों से क्या संबंध है आज के श्लोक का, विपरीत परिस्थितियां जो भगवान ने प्रस्तुत की है आज के श्लोक में, फिर महत्व समान व्यवहार को कैसे दिया है, युज्यस्व इस शब्द के दो अर्थ हमारे आचार्य क्या कहते हैं, और अंतिम पाप की परिभाषा। तो पिछले श्लोकों से आज के श्लोक का क्या संबंध है, क्या समझ पा रहे हैं आप, या केवल पिछला श्लोक हम लें 37, जिसमें भगवान ने स्वर्गारोहण कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे एक योद्धा कर सकता है, इसके विषय में बताया। केवल युद्ध कर युद्ध में यदि वो मर भी जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन देखिए बहुत ही बुद्धिमान क्षत्रिय है। ये नहीं समझना चाहिए कि केवल जो ब्राह्मण कुल के वही बुद्धिमान हुआ करते थे। अर्जुन का शास्त्र ज्ञान देखिए कि अर्जुन ने यह संशय भगवान के सामने प्रस्तुत किया कि भगवान यदि आप बोल रहे हो कि मैं युद्ध कर स्वर्ग को प्राप्त होऊंगा, कब? जब मैं मरूंगा, है ना। लेकिन अर्जुन निश्चित रूप से जानते थे और सभी जानते थे कि अर्जुन मरने नहीं वाले। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था अपने युद्ध कौशल पर कि वो युद्ध जीतने ही वाले थे। तो युद्ध जीतेंगे तो पृथ्वी पर रहना पड़ेगा ना राज्य करने के लिए, है कि नहीं? युद्ध जीतेंगे तो पृथ्वी पर रहना पड़ेगा राज्य करने के लिए। तो पृथ्वी पर यदि रहना पड़ेगा तो अर्जुन की आशंका क्या है कि पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं वो बिना चाहे पाप करते हैं, है कि नहीं? आप चाहे कितने भी बड़े पुण्यवान हो, कितने भी बड़े ज्ञानवान हो, कितने भी ऊंचे कुल में आप पैदा हुए हो, परंतु पृथ्वी में, केवल पृथ्वी में रहना अर्थ कि हमसे पाप होते हैं। बताया गया है शास्त्रों में कैसे सांस लेते समय, खाना बनाते समय, साफ सफाई कर चलते समय कितने हम अलग अलग प्रकार के जीवाणु कीटाणु की हत्या करते रहते हैं। तो अर्जुन अब यह प्रस्ताव भगवान के सामने रख रहे हैं कि आप कहते हो कि मैं युद्ध करूं तो मुझे उसमें फायदा है, हां यदि मैं मरूंगा तो उसमें फायदा है कि स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में कोई अकाउंटिंग नहीं होता। स्वर्ग में आप जो भी कुछ करो उसमें अकाउंटिंग एक ही होता है, खाली वो क्रॉस करते जाते हैं, ये पुण्य खत्म, ये पुण्य खत्म, खत्म खत्म खत्म। वहां पर कोई पुण्य अर्जित नहीं कर सकता, पाप अर्जित नहीं कर सकता, वहां पे केवल जो आपने पुण्य अर्जित किया है वो भोग लिया, एक पुण्य डिलीटेड, चलो नेक्स्ट। और जब पूरे पुण्य डिलीट हो जाते हैं तो फिर आप भी डिलीटेड, छीने पुण्य नीचे, आप भी नीचे। तो अर्जुन ने देखिए बहुत बुद्धि लगाई है पिछले श्लोक और आज के श्लोक के बीच में कि मैं तो जीतने वाला हूं और आप मुझे कोई युद्ध करने के लिए इसलिए थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं मरूं। तो ऑब्वियसली कि आप चाहते हो मैं जीतूं ना, युद्ध धर्म की स्थापना मेरे द्वारा ही तो आप कराना चाहते हैं, तो मैं जीतूंगा तो रहूंगा यहां पर और ये लोग जो मरेंगे ये जाएंगे स्वर्ग, है कि नहीं? तो वो नियम, यदि युद्ध में मरकर स्वर्गारोहण जाने का जो नियम है वो तो उनके लिए भी तो लागू है, दुर्योधन के लिए भी। इसलिए पांडवों को पृथ्वी पर रहना पड़ा राज्य करने के लिए। तो अर्जुन अब ये शंका भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान ने देखा, अर्जुन तुम इतना कैलकुलेटिव क्यों हो रहे हो? अब सांख्य योग भगवान ही सिखा रहे हैं। सांख्य योग का अर्थ क्या है? कैलकुलेशन, एनालिसिस, ये सब करना। तो भगवान ने ये श्लोक शुरू किया, अब समय कृत्वा ये सुख ये दुख ये लाभ ये हानि ये जय ये पराजय ये पाप ये पुण्य इससे ऊपर उठो और समान व्यवहार रखो। तो पिछले श्लोकों से आज के श्लोक का यह संबंध है कि अर्जुन ने यह शंका व्यक्त की। अर्जुन का कैलकुलेशन, अर्जुन की गणना, तो अर्जुन की गणना का यहां पर उत्तर देते हुए भगवान ने आज का ये श्लोक कहा। तो ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि कुछ समय हो गया था हमारे इस क्लास को, तो कनेक्शन साल भी बीत गया। तो पिछले श्लोकों से आज के श्लोक का ये संबंध। अब हम यदि देखें कि भगवान ने विपरीत परिस्थितियां, आप थोड़ा यहां बैठेंगे, इधर आ जाओ, विपरीत परिस्थितियां बहुत ही समझकर भगवान ने विपरीत परिस्थितियां अर्जुन के सामने प्रस्तुत की हैं आज के श्लोक के द्वारा। तो यदि हम देखें कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां भगवान ने प्रस्तुत की, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय पाप एवं पुण्य। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये जो भौतिक संसार है दुखालयम और अशाश्वतम। बहुत सोच समझ के भगवान ने इस संसार की रचना की है, क्योंकि यदि संसार में भगवान ने, हां भगवान ने कहा है कि दुखालय, परंतु फिर भी भगवान भगवद गीता के ही एक श्लोक में कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा। भोग का अर्थ क्या होता है? कुछ सुख आनंद। तो भगवान ने यह भी कहा है कि इस भौतिक संसार में इंद्रिय भोग में कुछ तो सुख है। जब संस्पर्ग होता है इंद्रियों का विषय वस्तु से तो उसमें कुछ तो सुख मिलता है भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसके पीछे पीछे दुख आता रहता है। तो यदि हम इन दोनों श्लोकों से यह समझें कि भौतिक संसार की रचना भगवान ने की है इन द्वंद्वों का मिश्रण से, कौन से द्वंद्वों के मिश्रण से? सुख और दुख। यदि केवल दुख होता तो भगवान आज के श्लोक में सुख ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते, है ना? भगवान ने कहा है सुखे दुखे समय कृतो, सुख और दुख या लाभ और हानि जो भी कुछ। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि ये द्वंद्व क्यों बनाए? अरे एक ही चीज होती तो कितना आसान होता हमें भगवत साक्षात्कार करने के लिए या जीने के लिए। यदि केवल दुख ही दुख होते इस संसार में तो सभी भगवान के द्वार पर आते रहते दुखी आत्मा। हाँ बहुत बार दुखी आत्मा आते ना भगवान के पास। तो यदि इतने सारे दुख होते तो फिर कोई प्रयास ही नहीं करता और कुछ करने का, तो भगवान की भक्ति में लगता। और यदि भगवान को हमें थोड़ा भी सुख देना था तो फिर ये दुख क्यों दिए? तो सुख ही देते ना। ये दोनों का मिश्रण क्यों, सुख और दुख या बाकी सारे जो द्वंद्व हैं, इसका मिश्रण क्यों दिया? हम सब इतने समय से इस भौतिक संसार में हैं, क्या यदि मैं पूछूं आप लोगों से, आप लोग जो सब यहां पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों ने आपके जीवन में ये द्वंद्वों का अनुभव किया है? किया है ना, दोनों का किया है हमने। बहुत बार हम बहुत सातवें आसमान पर बोलते हैं, नहीं तो गड्ढे के अंदर। कभी कभी मेडल हमको दिए जाते हैं, नहीं तो कभी कभी चप्पलों की माला। तो जय पराजय ये सब कुछ हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है। तो आप यदि आपकी बुद्धि लगाओ तो आप किस निष्कर्ष पर आओगे कि क्या है इस रचना के पीछे भगवान का प्रयोजन? द्वंद्वों की रचना के पीछे भगवान का प्रयोजन क्या है, या आपका साक्षात्कार क्या है द्वंद्वों का अनुभव करते हैं? वन एनहेंसेस द अदर। हाँ एक मिनट, एक एक लेते हैं हम। प्रभु जी ने कहा कि सुख जो है या दुख यदि लें तो दुख के वजह से हमें कुछ प्रयास करने, उस दुख का निवारण करने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं, है कि नहीं? जैसे उपनिषद में कहा गया है कि हम मनुष्य जो हैं या हर एक जीव इस भौतिक संसार में दो प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, आत्यंतिक सुख प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। तो जब हम दुख की निवृत्ति, मान लो कि सर्दी हो गई, बहुत ठंड है, सर्दी हो गई हमें, तो अब शरीर थोड़ा पीड़ा में है, बीमार है, तो उस दुख की निवृत्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं, है ना? क्या कुछ नहीं करे, विक्स लगाओ ना, क्या भाप लो, डॉक्टर के पास जाओ, फिर आइसक्रीम नहीं खाना है, बहुत कुछ हम प्रयास करते हैं। क्यों? ताकि फिर ये जो दुख है इसका निवारण हो। क्यों? ताकि सुख, फिर मैं आइसक्रीम खा सकूं, है ना? तो आइसक्रीम खाने के लिए सारे प्रयास चल रहे हैं। तो अब देखिए कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि वन एनहेंसेस द अदर, एक जो है वो दूसरे को बढ़ावा देता है कुछ कर्म करने के लिए। तो वैसे ही हम देखें कि इस भौतिक संसार में भगवान ने इनका मिश्रण इसलिए दिया है कि हम दोनों का साक्षात, दोनों से साक्षात्कार लें, कि सुख से हमें क्या साक्षात्कार मिल रहा है और दुख से हमें क्या साक्षात्कार मिल रहा है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, उससे मैं समझाऊंगा। दुख से तो हमें समझ में आता है कि भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि छोड़ो इस संसार को, ये किसी काम का नहीं है, नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा। तो दुख तो समझ में आ गया। अब सुख से हमें ये, हमारा जो शरीर है ये हमें कुछ ना कुछ सुख देता है ना, कुछ नहीं छोड़ दीजिए, जो जब खुजली होती तभी कितना अच्छा लगता है ना? अब है वो दुख, खुजली हुई है, लेकिन जो खुजलाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कई बार पाश्चात्य देश में तो लोग आजकल ऐसे हैं कि जानबूझ के अपने शरीर में खुजली लाते हैं, क्योंकि फिर वो खुजलाने में जो आनंद आता है, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में खुजली पैदा होती है। तो खुजली पैदा होती है तो फिर ऐसे ऐसे कुछ पार्लर है, स्क्रैच इचिंग पार्लर, ऐसे टाइप, वो फिर वहां उधर जाओ, पैसे दो, खुजलाएंगे आपको, बैठ के खुजलाते रहो, ये कलयुग। तो जब सुख कुछ हमें प्राप्त होता है इस शरीर के द्वारा, तो उदाहरण ये दिया गया है कि जैसे एक फल है, तो फल का जो छिलका है उसमें भी फल का कुछ रस आता है। आप आम का फल लो, आम का छिलका निकालो, है ना, वो छिलका भी कोई मारवाड़ी हो चूस लेगा ना पूरा, उसमें भी जितना रस थोड़ा भी पूरा निकाल लेता है वो छिलके में भी थोड़ा रस रहता है। अब हालांकि छिलका और वो जो आम का जो पल्प है अंदर, जो रसीला पदार्थ है, वो दोनों ये लग रहे होंगे कि विपरीत हैं, है ना? आप किसी को छिलका नहीं परोसते, आइए आज आम का मौसम चल रहा है, काट कूट के छिलका। तो जो छिलका है, अब छिलके की तुलना यदि हम शरीर से करें, छिलके की तुलना शरीर से करें, तो जो वो रसीला पदार्थ है उस फल का या आम का, उसकी तुलना किससे की जाएगी? आत्मा से। तो असली रस किस में है? आत्मा में। और क्योंकि ये आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कि वो जो आम है वो छिलके के अंदर बैठा हुआ है, है ना, ये छिलका है पूरा हमारा ये। तो उसी प्रकार से वो जो रस आम का छिलके के ऊपर भी आ जाता है, वो थोड़ा डोनेट कर रहा, चल तेरे लिए भी थोड़ा रस दे देता हूं, इतना तू मेरे को पकड़ के रखा है अंदर, तो तेरे को भी थोड़ा रस। तो ये जो शरीर में थोड़ा बहुत सुख मिलता है ना हमें, भगवान क्यों ये सिखा रहे हैं हमें, थोड़ा बहुत सुख क्यों दिया है, ये समझने के लिए कि एक सैंपल है ये। मानो कि कोई जिंदगी भर आम देखा ही नहीं, केवल छिलके को ही चाटते आ रहा है, और उसको छिलका ही इतना रसीला लग रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि छिलके के पीछे इतना बड़ा आम भी है, उसके अंदर इतना रस भी है। तो ये उदाहरण दिया गया है कि वो जब छिलके के संपर्क में आता है व्यक्ति, तो छिलके से वो जिज्ञासा करता है कि इसका सोर्स कहां है ना। बुद्धिमान व्यक्ति वो छिलके के सोर्स के प्रति जिज्ञासा करता है। जैसे चींटियां होती है ना, चींटियां देखो, कहीं किसी ने किचन में शहद की बोतल खोली, कुछ डाला तो कुछ बूंदे गिर जाती है ना, बूंदे गिर गई शहद के नीचे, फिर उसने शहद की बोतल किसी अलमारी में किचन में रख दी। अब चींटियां क्या करती है कि यहां पे बूंदे गिरी है, सोर्स किधर है, सुबह अलमारी खोलो तो पूरा वहां पर पार्टी चल रही है उनकी, है ना। तो चींटियों ने बुद्धि लगाकर क्या खोजा कि ये जो एक दो बूंदे हैं इससे हम संतुष्ट नहीं होने वाले, इसका सोर्स क्या है, सोर्स बताओ, तो सोर्स ढूंढते हैं वो लोग। तो वैसे ही हम जो मनुष्य हैं, ये शरीर जो हमें सुख देता है, इससे हमें क्या बुद्धि लगानी चाहिए कि इसका सोर्स कहां है। जब मैं खाता हूं, देखता हूं, कुछ भी करता हूं, ये शरीर के द्वारा मुझे जो भी कुछ सुख मिलता है, इसका सोर्स अंदर बैठा हुआ है, आत्मा, ये बाहर केवल छिलका है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है, छिलके के परे जाइए। कलयुग की भाषा में आत्म साक्षात्कार मतलब छिलके के परे जाना, केवल छिलके में नहीं अटके रहना। तो इसलिए ये जितने भी द्वंद्व भगवान ने इस भौतिक संसार में दिए हैं हमें, हर समय ऑन गार्ड रखने के लिए, नहीं तो कोई उदासीन रह जाएगा, केवल दुखी दुख या केवल सुखी सुख, सुख भी बहुत बोरिंग हो जाता है लोगों को, इसलिए उसमें एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए। एक बार एक पिताजी अपने बेटे को कहे माचिस लेके आओ खरीद के, तो बेटा माचिस लेके आया, वो पिताजी ने माचिस जलाने की कोशिश की, एक भी माचिस नहीं जली, तिली। तो उसने पूछा ये क्या माचिस लाया, एक भी माचिस नहीं जलती। तो पिताजी मैं तो पूरे सब चेक करके लाया था। तो इसका क्या मतलब, उसको बोला था कि ठीक से चेक करके लाना, तो उसने हर एक तिली चेक करके लाया। तो वैसे ही ये भौतिक संसार है, जब तक हमें कुछ पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है, इसमें थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहता है, सस्पेंस, उसके वजह से लोग यहां वहां आगे पीछे भाग रहे हैं, काम चल रहा है, साम्राज्य खड़े हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, ये द्वंद्व। कि हां यदि किसी को ये बोल दिया जाता कि ये पूरे साल में कोई तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला है, ये जॉब नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलना, तो वो तो बैठ जाएगा फिर, मिलने नहीं वाला है तो फिर क्यों बाहर जाऊं, क्योंकि पता नहीं उसे उसके भविष्य के विषय में। तब वो खड़ा होता है, यहां जाता है, वहां जाता है, काम करता है, हाथ पैर मारता है, और जब उसे ये बता दिया जाए कि दुख आने वाले हैं, तब भी फिर उठ के हाथ पैर मारेगा उसको दूर करने के लिए। तो या सुख हो या दुख हो, भगवान हर समय इसे हमें अंधेरे में रखते हैं, या प्रकृति हमें अंधेरे में रखते हैं ताकि हम कर्म में लगते रहें और धीरे धीरे छिलके के परे जाएं। तो यदि हम देखें काल चक्र, इस पूरे संसार में भगवान ने हमारे जीवन में जो कुछ होता है या पूरी सृष्टि में जो कुछ होता है वो काल के अधीन होता है। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, भगवान कहते। तो काल चक्र, इसे चक्र क्यों कहा गया है? काल या समय को चक्र क्यों कहा गया? जैसे पाश्चात्य देश में वो जो वैज्ञानिक वो समय को अंग्रेजी में यदि कहें साइक्लिकल नहीं समझते थे, वो लीनियर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, टाइम वॉज कैलकुलेटेड इन अ लीनियर फैशन, बट इन अवर वैदिक सिस्टम टाइम इज कैलकुलेटेड साइक्लिकली, ऐसे चक्र की तरह। क्या? क्योंकि चक्र का अर्थ है, अब जैसे इस चक्र का आप देखिए, तो ये जब चक्र घूमता है, अभी क्या दिख रहा है कि वो जो कोई उसका स्पोक है वो ऊपर है, और फिर एक जब चक्र ये काटेगा हिलेगा तो फिर वो नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो कोई कह सकता है कि एक दूसरे से बड़ा है या एक दूसरे से ऊंचा है या नीचा है? नहीं। तो क्या समझ में आया फिर इससे? चक्कर में खा गए क्या? समझ, काल चक्र से आज के श्लोक का क्या संबंध है? हाँ, जो आया है वो जाएगा और जो गया है वापस आएगा, है ना? चक्र, ये भाग अब नीचे जा रहा है तो ऊपर भी आएगा, ऊपर आया है तो नीचे भी जाएगा। तो अभी जो प्रधानमंत्री के पद पे कोई बैठा हुआ है तो आगे चलकर जो भी, और जो अभी अगर कोई जमादार है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हम लोग, शास्त्र में बताया गया है कि हम लोग एक यहां जितने जो बैठे हैं और जितने भी जीव इस भौतिक संसार में हैं, एक दिन हम सब ब्रह्मा जी थे। अच्छा लगता ना? हाँ, सत्य बात है, हम लोग सब एक दिन ब्रह्मा जी थे। इसलिए तो श्लोक है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक जो भी इसका आवागमन चलता रहता है इस काल चक्र के द्वारा। तो ये समझ लेना चाहिए कि भौतिक स्तर पर कई बार लोग, मेरा काल पता नहीं ठीक नहीं चल रहा, इसकी वजह से, उसके वजह से, इसके। तो चाहे कोई भी हो इस भौतिक संसार में, चाहे वो बड़े से बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो, धनवान ज्ञानवान जो भी व्यक्ति हो भौतिक स्तर पर, वो यदि उस स्तर पर अभी है तो भगवान ने कह दिया अशाश्वतम, एवरीथिंग इज टेम्पररी, वंस ब्यूटी नॉलेज फेम स्ट्रेंथ सब कुछ टेम्पररी, और इसका विपरीत भी, दुख भी टेम्पररी है। यदि ऑपुलेंस टेम्पररी है तो दुख भी, वो भी टेम्पररी है। तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने इस प्रकार से इस संसार को बनाया। तो समय, समय इस चक्र के अनुसार ऊपर नीचे हमारा होता रहता है। और यदि स्थिति, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या चित्र है स्थिति चक्र के संदर्भ में, तो एक सुंदर उदाहरण दिया गया है हमारे शास्त्रों में। ये क्या हो रहा है? तो गोबर के कंडे वहां पर सुखाए जा रहे हैं, है ना? ये बहुत एक साधारण दृश्य है भारत के, हम गांव में देखते हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है, इसका एक संस्कृत श्लोक भी है कि दो गोबर के कंडे आपस में चर्चा कर रहे थे। कल्पना कीजिए, दो गोबर के कंडे आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो गोबर का कंडा, जो भी इसको बोलेंगे, वो सूख रहा है ऊपर दीवार पर, तो एकदम जनवरी का महीना है, धूप सेक रहा है आराम से, है ना, और फिर चूल्हा जल रहा है उसी घर के प्रांगण में, चूल्हा जल रहा है और चूल्हे में जो एक हफ्ते पुराना कंडा चूल्हे में डाला गया है अभी, तो ये जो यहां पर ऊपर चिपका हुआ धूप सेक रहा है उसकी तरफ देख रहा है। तो उसकी हालत को देखकर वो हंस रहा है और ये जो अभी अंदर जा रहा है ये बोल रहा है, रुक जा बेटे, तू जब सूख जाएगा ना तो आंटी जी छोड़ेगी नहीं। तो ये उदाहरण दिया गया है कि हम भी गोबर के कंडों के जैसे, कभी हमारी स्थिति होती है कि हां लॉटरी लग गई, पैसे आ गए, इकोनॉमी बढ़ रही है, शेयर मार्केट में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बॉस भी बहुत खुश है, हा? और सब जगह से अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और फिर हम पेपर में पढ़ते हैं किसी के बारे में, उसका ये लूट गया, उसका वो लूट गया, बेचारा। फिर हमें लगता है मैं तो सब कुछ ठीक है, पासबुक चेक कर लेते हैं सब ठीक है, फिर बाद में पता लगा कि हमारी बिल्डिंग में कोई हमारा ही पड़ोसी वो भी पेपर पढ़ रहा है और वो पेपर में हमारे बारे में पढ़ रहा है। एक महीने बाद, एक साल बाद हमारे बारे में पढ़ रहा है। तो वही युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति है यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथ परम, कि रोज यम के आलय में बिना वीजा के पासपोर्ट के जा रहे हैं लोग, और शेष स्थावर जो यहां पर बचे हुए वो उनको जाते हुए देख कहते हैं कि मैं तो आप जैसा दुर्भाग्यशाली नहीं हूं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। तो स्थिति, काल को देखें और स्थिति को देखें। तो इस भौतिक संसार में हम किससे घिरे हुए हैं? स्थितियों से, काल से, देश, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, देश काल पात्र, है ना, इनसे घिरे हुए हैं और हम इन्हीं में सुख ढूंढते रहते हैं, अपनी अपनी जीत या जय ढूंढते रहते हैं, लाभ ढूंढते रहते हैं, परंतु इनहेरेंटली इन सब को भगवान ने चक्र के रूप में बनाया है, चाहे काल हो या स्थिति हो, चक्र के रूप में है। वो अभी ऊपर जो है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आने ही वाला है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जो जन्म लिया है मरने वाला है और जो मरने वाला है वो फिर से जन्म लेगा ही अवश्य। तो ये है स्थिति चक्र हमारे जीवन में। तो याद रखना, गोबर के कंधे, जब भी हम धूप सेक रहे हैं अच्छी से, एकदम बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो समय आने वाला है। अब यदि हम देश चक्र पर देखें तो ये कुछ आपको सामने, ये यूरोप में एक बहुत सुंदर इमारत, इसके ध्यान से आप देखिए, बहुत ही इसमें प्रशिक्षण लगा है, खर्चा किया गया है इस इमारत को बनाने के लिए, यूरोप में है ये। तो इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे अंदर से बाहर से। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये इमारत, इमारत को देख के क्या लग रहा है? कांच की बनी, और क्या होगा ये इमारत, क्या होगी? ये जेल है, जेल। ये यूरोप में ऑस्ट्रिया कर एक देश है, वहां का जेल है जेल। और भी आपको इसके चित्र दिखाएंगे। तो कोई अगर वहां पर कैदी बनता है तो देखिए उसके ऐशोआराम। ये अभी थोड़े और निकट से उसकी फोटो हैं जेल की। ये अंदर उसका ऑफिस का लॉबी है, और यहां पर कोई अगर कैदियों से मिलने आता है तो कैदियों के बैठने के लिए, जो उनके विजिटर है उनके बैठने के लिए सुविधाएं। कैदियों के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम। ये जेल के अंदर उनके लिए बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, ये रहने के लिए एक एक सेल। वो जेल का एक एक सेल जो है वो इस प्रकार से, देखिए टीवी है, और लेकिन सामने देखिए वो सलाखें हैं, जेल की सलाखें होती ना, वो भी हैं। तो सोचिए भारत में अगर ऐसा हो जाए। वेडनेसडे प्रोग्राम सब जेल में जाके करना पड़ेगा। तो ये उनका कॉमन रूम, जहां पर कॉमनली वो लोग बैठकर जो भी चर्चाएं कर सकते हैं कि क्या क्या किया था हम लोग ने, किसके वजह से आए, बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अंदर जिम है, क्या आप अच्छे से मोटे तगड़े होकर बाहर निकलिए। लेकिन फिर भी है जेल के अंदर। कभी कभी बैठ के बेचारा अकेला सोचता रहता है कि मैं फिर भी एक कैदी हूं, चाहे जितनी भी सुविधाएं हो फिर भी मैं एक कैदी हूं। तो चाहे यूरोप के ऑस्ट्रिया देश का ऐसा जेल हो या ये हमारा, तो यहां पर यह बताया गया है कि देश चक्र, जैसे हमने काल चक्र, स्थिति चक्र, और यह है देश चक्र। तो कोई उस देश में यदि पैदा हो गया, बस वो कैदी भी बनता है तो 5-star अरेंजमेंट्स उसके, और कोई ऐसे देश में पैदा हो गया उसके वजह से, तो इसका अर्थ यह है कि ये जो अभी जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो वो पाकिस्तान का है, मैं भारत का हूं, और शत्रु देश है ये सब, तो प्रभुपाद कहा करते थे कि तुम जब उससे युद्ध कर रहे हो, पाकिस्तानी से, तो पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हो और पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को गाली दे दे के मार रहे हो, तो अंतकाले किसका किसका स्मरण कर रहे हो, पाकिस्तानी का। तो पैदा कहां होंगे फिर, पाकिस्तान में, वहां पैदा हो गए, फिर वहां बंदूक थमा दी, अब भारतीय को मारो, तो मारते मरते समय वो भारतीय की, वो भारतीय का स्मरण कर रहा है, तो वापस भारत में जन्म, तो ऐसे फुटबॉल की जैसे यहां से वहां वो जन्म लेता ही रहेगा। तो ये जो देश चक्र, काल चक्र के अनुसार, जिसे भगवान ने कह दिया, चाहे ब्रह्मन लोक तक, सोच ये सब तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मन लोक को भी यदि कोई प्राप्त कर लेता है, और यदि कोई एक कीड़ा भी बन जाता है, भगवान कहता है दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों की विपरीत परिस्थिति हो सकती है। तो इसलिए यहां से हमें यह समझना है कि भगवान ये बोल रहे हैं, जैसे कि हमने वो जेल की तस्वीरें देखी, तो हो सकता है किसी के मन में इच्छा हो गई, अच्छा जाके देखना चाहिए, है ना, हो जाती है ना इच्छा, अरे जाके देखना तो चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि न तो तुम सुख से प्रभावित हो न दुख से, क्योंकि ये सब दोनों भ्रम हैं। ये दोनों किस प्रकार के हैं, वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल, बस उस प्रकार का अंतर बताया गया है। तो अब समान व्यवहार, भगवान यहां पर समान व्यवहार का महत्व बता रहे हैं, समय कृत्वा, कि कैसे तुम्हें अर्जुन समान रहना है इस हर एक स्थिति में। तो हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु महाराज के पुत्र हर्ष शोक, अब देखिए उनको नाम जो दिया गया कि वो हर्ष और शोक दोनों के कारण बनेंगे। तो चित्रकेतु महाराज वो इतना प्रभावित क्यों हो गए थे अपने पुत्र से, क्योंकि उन्होंने केवल हर्ष इसके ऊपर गौर किया। जब अंगिरा मुनि ने चित्रकेतु महाराज से कहा, एक तो आपके नसीब में पुत्र है नहीं, परंतु चित्रकेतु महाराज कहते नहीं, मुझे ये न केन प्रकारेण आप दीजिए, आपने तो क्या फायदा आपका, इतने बड़े ऋषि हैं। तो फिर अंगिरा मुनि ने ये जो पुत्र चित्रकेतु महाराज को उनके योग सिद्धि से दिलवाया, कहा कि इसका नाम रखना होगा हर्ष शोक। तो अंगिरा मुनि ने यह समझा कि कम से कम हर्ष शोक नाम से चित्रकेतु महाराज समझ जाएंगे कि ये संसार की रचना किस प्रकार की। परंतु चित्रकेतु महाराज केवल हर्ष हर्ष, अरे शोक क्या देगा, थोड़ा ना वो रोएगा, नटखट पना दिखाएगा, इससे ज्यादा क्या शोक दे सकते। यहां पर शोक क्या हुआ, खत्म, मर गया वो कुछ समय बाद। तो हर्ष शोक वो अपने पिता से कहता है कि मुझे तो पता नहीं आप कौन से माता पिता की बात कर रहे, कौन से वाले हैं आप, कौन सा नंबर है आपका, कितने सारे मेरे आए, कितने सारे मेरे आने वाले हैं, कितने चले गए, कितने आएंगे माता पिता, आपका नंबर कौन सा है, मुझे क्या पता। तो जो हर्ष शोक वो समान व्यवहार दिखा रहे थे कि मुझे जो माता पिता मिले वो जाने वाले हैं, और मुझे माता पिता और मिलने वाले हैं वो भी जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपकी तरह प्रभावित नहीं हो रहा। तो समान व्यवहार, इक्विपॉइज जिसे कहते हैं। फिर उदाहरण है जड़ भरत, भरत महाराज जो कि हिरण बन गए, और फिर उन्हें साक्षात्कार हुआ उनकी गलती का, और हिरण के पश्चात फिर वो जड़ भरत के रूप में। तो जड़ भरत के रूप में वो जो भौतिक समाज के नियम हैं उसके बिल्कुल विपरीत काम किया करते थे। भागवत में इसका उल्लेख दिया गया है कि जड़ भरत वो यदि नहाने जा रहे हैं तो पहले शौचालय जाएंगे फिर जाके नहाएंगे, नहीं पहले नहाएंगे फिर जाएंगे शौचालय, उल्टा। तो वो ये सब उल्टा इसलिए कर रहे थे, जानबूझ के उल्टा सब कुछ कर रहे थे, हालांकि बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े साक्षात्कारी थे, वो जानबूझ के इसलिए कर रहे थे कि मैं किसी से भी प्रभावित ना हूं, क्योंकि एक बार मैं एक हिरण से प्रभावित हो गया और मुझे हिरण का शरीर मिला, तो अब मैं किसी से भी, किसी भी स्थिति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी काल से मैं प्रभावित ना हूं। तो वो समान व्यवहार दर्शाने के लिए जड़ भरत का यह उदाहरण। और श्री संप्रदाय की एक कथा है रंका और बंका, ये दंपति थे। तो बहुत बड़े ये भगवान श्री विष्णु के भक्त, और वो श्रीरंगम में रहा करते थे, तो वहां पर बहुत प्रसिद्ध थे ये दोनों। किसलिए प्रसिद्ध थे, एक वैराग्य का जीवन हालांकि थे वो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन विरक्तियों से भी ज्यादा वैराग्य इनके अंदर था। तो कुछ द्वेषी वो इनको नीचा दिखाने के लिए इनकी परीक्षा की। तो ये रोज अपने झोपड़े से निकलकर भगवान श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने जाते। कौन? रंका और बंका। रंका पत्नी का नाम, बंका पति का नाम। तो ये दर्शन करने जाते तो ये द्वेषी व्यक्तियों ने किया क्या कि जंगल के रास्ते में सोना चांदी पेड़ के नीचे रख दिया। असली सोना और चांदी पेड़ के नीचे ऐसे उनको दिखे रास्ते में रख दिया। और फिर सभी लोग कैमरा वैमरा लेके बैठ गए कि देखते हैं ये लोग इसे प्रभावित हो गए, लेंगे ना, अभी रास्ते में सोना चांदी रखा हुआ है तो कोई उठाएगा, कुछ तो उठाएगा उसमें से। तो जैसे उठाएगा तो सबके सामने इनका पर्दाफाश कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि जो पति थे वो थोड़ा आगे चल रहे थे और पत्नी वो पीछे थी। तो पति ने देख लिया तो पति के मन में ये भाव आया कि मेरी पत्नी यदि इसे देख लेगी तो हो सकता है कि मेरी पत्नी प्रभावित हो जाए इससे। तो मेरी प्रभावित हो जाएगी तो फिर वो रख लेगी, फिर इसको संभालना पड़ेगा, भक्ति कम हो जाएगी। तो पत्नी इसे प्रभावित ना हो इसलिए वो छुपाने लगे, जल्दी जल्दी उसको मट्टी उसके ऊपर डालने लगे कि पत्नी ना देखे। तो फिर जब वो मट्टी डाल रहे थे तो पत्नी ने देख लिया कि नीचे सोना चांदी है, सोना चांदी के ऊपर ही मट्टी डाल रहे हैं। तो पत्नी क्या कहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पत्नी अपने पति से कहती है, किसे, बंका से कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? ये उनका साक्षात्कार कि उन्होंने देख लिया कि वो सोना चांदी है तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी आप क्यों डाल रहे हैं? दर्शन के लिए हम लेट हो रहे हैं। चलिए, इसे कहते हैं समान व्यवहार। तो यहां पर भगवान अब अर्जुन को धीरे धीरे वो जो कर्मकांड विचार है कि स्वर्ग प्राप्ति या नर्क में जाना डर के मारे, उसके लिए ये करना, युद्ध करना, नहीं करना, तो धीरे धीरे भगवान अब उठा रहे हैं वहां से, कर्मकांड विचार से उठाकर समान व्यवहार का महत्व क्या है। अब युज्यस्व, ये जो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है, युद्धाय युज्यस्व, इसका अर्थ है, एक अर्थ हमारे आचार्य बताते हैं युद्ध लड़ो, और युज्यस्व का एक और अर्थ है युद्ध में लगो। क्या अंतर हुआ दोनों में? युद्ध लड़ो और युद्ध में लगो। काम आना, सपोर्ट कृष्णा, सही बात है। तो युद्ध लड़ो, ये भगवान यदि कहते, यदि इसे इस प्रकार से अनुवाद कर अर्जुन समझते तो हार जीत, अब तक भगवान जो बोल रहे हैं लड़ो लड़ो, तो हार जीत, क्योंकि लड़ने का निष्कर्ष क्या है कि या तो मैं हारूंगा या जीतूंगा, है ना। लेकिन भगवान ने यहां पर आज के श्लोक में युज्यस्व, युद्धाय युज्यस्व, युद्ध में लगो, इसका अर्थ है कि तुम कर्तव्य, तुम अपने कर्तव्य को समझते हुए तुम केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो कि इसमें तुम्हें क्या प्राप्त होगा या क्या तुम नहीं प्राप्त होगा तुम्हें, ये सब की तुम चिंता से मुक्त हो जाओ, युद्ध करने के लिए तुम युद्ध करो। इसलिए बहुत आवश्यक है युज्यस्व इस शब्द के दो अर्थ। और अंत में पाप की परिभाषा, शास्त्रों में बताया गया है पाप की परिभाषा संक्षिप्त रूप में यह है, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जो कर्म, किए जाते हैं उसे कहते हैं पाप। तो अब इसे भी हमें देश काल पात्र के अनुसार, इस परिभाषा को भी देश काल पात्र के अनुसार ही समझना होगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो यदि हम और गहराई में इसे समझें तो तथाकथित पाप और तथाकथित पुण्य, इसका अर्थ क्या हुआ? सो कॉल्ड सिन, सो कॉल्ड पायटी। तो यदि पाप पुण्य को हम लें तो एक उदाहरण से हम समझेंगे कि तथाकथित पाप क्या है। मृगरारी। अब मृगरारी एक ऐसा शिकारी था जो जानवरों को अधमरा कर तड़पता हुआ छोड़ देता था और उसमें उसे बहुत आनंद आता था। अधमरा कर वो तड़प रहे हैं, पूरा नहीं मारता था उनको, और उनको तड़पता हुआ देखकर इसे बहुत आनंद आता था। तो नारद मुनि मृगरारी को क्या देते हैं संदेश या आदेश? सबसे पहला आदेश, पूरा मारो। तो अब ये मृगरारी जो आदेश पालन कर रहा नारद मुनि का, तो यदि प्रश्न पूछा जाए क्या ये पुण्य है या पाप, जानवरों को पूरा मारो, ये कौन सी श्रेणी में आएगा? क्यों क्यों पुण्य की श्रेणी में आएगा? केवल यही कारण है कि वो पुण्य की श्रेणी में आएगा? क्या कारण है? सोर्स क्या है? सोर्स, वो जो आदेश पालन कर रहा है उनके सोर्स कौन है? नारद मुनि। तो यदि नारद मुनि को पूछा जाए कि आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है क्या? नहीं, लेकिन नारद मुनि ने उस समय देश काल पात्र के अनुसार मृगरारी आगे का संदेश नारद मुनि से सुने, इसलिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम ये कहा। सीधा अगर नारद मुनि शुद्ध भक्ति का लेक्चर चालू कर देते, सर्वधर्मान परित्यज्य ये सब कुछ, तो मृगरारी तो तीर निकाल देता नारद मुनि के ऊपर कि चलो एक और शिकार मिला है। तो मृगरारी को तुरंत उसका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए वो जो एक आदेश नारद मुनि ने दिया पूरा मारने का, वो पाप की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि आगे चलकर मृगरारी को नारद मुनि ने इतना बड़ा भक्त बनाया। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि भारी दृष्टिकोण से वो एक पाप का संदेश था, लेकिन नहीं। अब एक और है कौशिक मुनि करके, इन्होंने प्रण लिया था कि ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कौशिक मुनि ने ये एक प्रतिज्ञा ली थी कि कभी वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो कुछ डकैत वो कौशिक मुनि के आश्रम में आए और वो मांस खाने की इच्छा से, गौ मांस खाने की इच्छा से, तो उन्होंने कौशिक मुनि को पूछा कि आपके आश्रम में गाय है क्या? तब इन्होंने प्रतिज्ञा क्या ली थी कि झूठ नहीं बोलेगा, हां है, बस तो आप साइड में हो जाओ। वो गए, गाय को काट दिया, मार दिया, वो मांस खाया। तो अब ये प्रश्न है कि कौशिक मुनि यदि उस समय झूठ बोलते गाय नहीं है, तो क्या वो पाप की श्रेणी में आता या पुण्य की श्रेणी? नहीं नहीं, वो पूरी स्टोरी वही है, सब मालूम था उनको इंटेंशन। वो सोचे, सोचने के बाद उनको उनकी प्रतिज्ञा ज्यादा प्यारी थी, अपनी प्रतिज्ञा ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने वो सच कहा। जैसे महाभारत में भी जो विभिन्न प्रकार से कुछ योद्धाओं का वध किया गया, जो कई बार देखा गया कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन क्यों कि अंततः उसका जो परिणाम धर्म की स्थापना करने के लिए हो रहा था, तो उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उसे जो भी कुछ हुआ वो पुण्य या धर्म की ही श्रेणी में माना जाएगा। तो इसे यह समझ में आता है कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो अपने दृष्टिकोण से किसे पाप मान रहे हो, पुण्य मान रहे हो, स्वर्ग और नरक और सुख और दुख और लाभ और हानि, तुम मुझसे पूछो उसका ट्रांसलेशन क्या है। ये तुम्हारा तथाकथित जो जो तुम्हारी पराजय या तुम्हारी जय, इस सब का तात्पर्य तुम मुझसे पूछो। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि जब हम इस भौतिक संसार में, हां, बहुत से धर्म के ही जो संदेश या आदेश दिए हैं शास्त्रों से ही संबंधित, लेकिन हम उसको किस प्रकार से, जैसे एक श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल, हालांकि वो इतने ऐसे पक्के शिष्य नहीं थे, तो हुआ क्या कि उन्होंने प्लेन में गलती से उन्होंने ये खा लिया था, मशरूम, जो कि भक्त नहीं खाते। उन्होंने किसी सलाद वलाद में मशरूम था, तो मशरूम खा लिया। तो प्रभुपाद से उन्होंने लेटर लेके पूछा, प्रभुपाद, एक्सीडेंटली एट सम मशरूम। तब वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा पाप हो गया था, तो प्रभुपाद ने केवल लिख दिया, मशरूम, इट्स ओके। तो उन्होंने ये सेंटेंस प्रभुपाद का लिया और उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया मशरूम का, कि प्रभुपाद ने कहा मशरूम्स आर ओके। तो बहुत समय तक वो प्रभुपाद की स्टेटमेंट को लेके इस्कॉन के डिवोटीज को कहते थे कि मशरूम खाने में कोई हानि नहीं है। और जब बहुत सालों बाद जब कॉन्टेक्स्ट पता लगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद ने, हां, आर्काइव्स में जाके उन्होंने चेक किया कि प्रभुपाद का ऐसा एक लेटर था, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद ने कहा था कि भाई तुमसे वो गलती से हो गया तो ठीक है यार, उसके तुम अभी उसको ना पकड़ के अपना माला मत छोड़ दो। तो ये प्रॉब्लम होता है जब शास्त्र के ही आदेश, जो कि पुण्य के विषय में या धर्म के विषय में कहे गए हैं, उन्हें हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या पाप को भी, पुण्य को भी और पाप को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर उसे हम अपने जीवन में पालन करना शुरू करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि मैं, अब देखिए, श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर मुद्दा अपने एक प्रवचन में कहा कि भगवान ने वही भगवद गीता में कहा कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य, वही भगवान इसी भगवद गीता में कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं, और इसी भगवद गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं छोड़ो धर्मों को, सर्वधर्मान परित्यज। तो ये हो गया, विरोधाभास लग रहा है ना, कि जो धर्म की स्थापना करने आ रहे हैं वही बोल रहे हैं कि तिलांजलि दो सारे धर्मों को। कॉन्टेक्स्ट समझना है हमें कि भगवान किस कॉन्टेक्स्ट में वो श्लोक बोले हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में जो अंतिम श्लोक बोले हैं, तब जाकर हम भगवद गीता के ज्ञान को ठीक रूप से समझ पाएंगे। तो अभी भगवान आज का जो श्लोक कहे हैं, आज के श्लोक से भगवान शुरुआत कर रहे हैं निष्काम कर्म। तो अगले श्लोक में भगवान अब निष्काम कर्म की नींव आज के श्लोक से डाले हैं। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इसका अंतर क्या है, इसकी हम चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। जैसे कि स्वर्गवास और वैकुंठवास, इसके विषय में श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रवचन में बहुत अच्छा मुद्दा कहा कि किसी व्यक्ति को स्वर्गवास जाना है तो पाप से मुक्ति होनी चाहिए, और वैकुंठवास जाना है तो पुण्य से मुक्ति होनी चाहिए। क्योंकि वैकुंठ जाने के लिए ये दोनों पाप और पुण्य के परे व्यक्ति को जाना है। जैसे कि हमने हमारे गीता कोर्स में चर्चा की थी, अकर्म, पुण्य और पाप के ऊपर है अकर्म। तो यही भगवान आज के श्लोक के द्वारा, अब ये सकाम कर्म की वृत्ति अर्जुन तुम छोड़ो कि क्या तुम्हें मिलने वाला है, क्या तुम खोने वाले हो, अब तुम मैं जो बोल रहा हूं युद्ध करने के लिए युद्ध करो और उसका परिणाम मुझ पर छोड़ दो। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।